Om Shanti. Good morning. आज खास दिन है, हम सभी होली का त्योहार मनाएंगे, लेकिन त्योहार मनाने के पहले बाबा ने हम बच्चों को हर बात का ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन येट बिकॉज इज नो वन अप देयर, समझ में नो, The song was beautiful at least, be colored by God's company. Shuru kare ya intezar kare? Aage. Okay. तो बाबा ने हम बच्चों को हर बात का रहस्य सुनाया है. कई बार हम कहीं कुछ ऐसी बातें करते हैं तो भक्ति वाले लोग कहेंगे कि आप लोग भी तो भक्ति करते हो ना, लेकिन हम भक्ति नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं, हम राज समझकर, उसका रहस्य समझकर कोई भी बात करते हैं तो उसमें जो भक्ति यानी कि जो अंधश्रद्धा की बातें हैं वो बातें नहीं रहती हैं, और जो बात हम समझ के करते हैं उनसे प्राप्ति होती है, उनसे शक्ति मिलती है. तो होली का रहस्य बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से सुनाया है. सिंपल बात है कि भगवान की याद से हमें भगवान का रंग लग जाता है, और एक तो है ज्ञान का रंग, गुणों का रंग, शक्तियों का रंग, लेकिन कल अमृत वेले से यही भासना आ रही है कि हम बाबा को याद करते हैं तो आत्मा शुद्ध बनती है, आत्मा में पवित्रता आती है. भगवान का मुख्य क्या कहेंगे, गुण कहेंगे या स्थिति कहेंगे, रूप कहेंगे, वो है पवित्रता. तो जितना हम बाबा को याद करते हैं, हर वारी जब बाबा को हम याद करते हैं तो हमें भासना आए कि बाबा की शुद्धता पवित्रता का रंग कहो या प्रभाव कहो या असर कहो, हम आत्मा के ऊपर कहां तक पड़ी हैं. बहुत ही सहज और सिंपल बात है, लेकिन बहुत ही श्रेष्ठ बात है. तो कहा जाता है कि जितना जितना हम याद में, जब भी हम याद में बैठते हैं तो उस याद के बाद आत्मा जो पहले बैठने से पहले थी ऐसी न रहे, समझा? जिस जैसे हम याद में बैठे थे ऐसे याद से हम उठे नहीं, यानी कि हम परिवर्तन होकर उठे. तो थोड़ी भी परमात्मा की पवित्रता की असर आत्मा के ऊपर पड़ती है, सच्चा सच्चा रंग हम कहेंगे ये हैं. और दूसरी बात ये भी है कि होली, ये भी बाबा ने राज समझाया है. जानते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन जब कोई ऐसा अवसर आता है तो उस अवसर पर हमें विशेष ध्यान देना है कि अच्छा आज हम कौन सी बात पर होली कर लेंगे. होली याना यानी कि हो चुकी, खत्म हो गई, जो बात हो गई वो तो हो गई, कभी भी रिपीट नहीं होती है. रिपीट कहां होती है, यहां यहां घड़ी घड़ी याद रहती हैं, तो यहां फिर वो अंडरलाइन होती रहती हैं। और वैसे बायोलॉजिस्ट कहो या साइंटिस्ट कहो, जो भी कहो, वो कहते हैं कि जितना जितना हम कोई भी बात को याद रखते हैं ना, उसके वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी न सिर्फ हमारे आत्मा में फिक्स हो जाती है, लेकिन शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इस कारण से जो नेगेटिव याद की बातें हैं, ये हमारे शरीर में भी असर कर लेती हैं। तो याद में हम बाबा का रंग लगे माना सिर्फ आत्मा पर नहीं, शरीर पर भी परमात्मा की शुद्धता, पवित्रता की असर शरीर पर भी पड़े, तो शरीर में जो एनर्जी नेगेटिव भरी हुई है वो भी साफ होती जाए। तो आप थोड़ा सोचना कि वो याद कैसी होगी। मुझे याद है एक बार अव्यक्त बाप दादा ने भी बताया था कि याद में तन मन से, बुद्धि से और तन से भी बाबा को याद करना है। तन से कैसे याद करेंगे? तन से माना जो हम जहां जैसे बैठे हैं, तो बाबा के वाइब्रेशन और बाबा की एनर्जी की असर हमारे तन पर भी पड़े। ये याद जैसे टोटल हमको बुद्धि से, दिल से, मन से याद रहती है, तो हर बात पर इसकी असर पड़ती है। तो आज होली बाद में मनाएंगे, बाबा को भोग भी लगाएंगे, हम अपना जो भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं वो भी बाबा को स्वीकार कराएंगे और फिर होली भी खेलेंगे। और आज बाबा ने ध्यान खिंचवाया है आत्म अभिमानी स्थिति के ऊपर, कि किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो आत्म अभिमानी स्थिति से सुनाएंगे, तो वो ज्ञान फिर उसको जचेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। और ये आप सोचे कि ये आत्म अभिमानी स्थिति कितनी सूक्ष्म है, उसके वाइब्रेशन ही किसी की बुद्धि में ज्ञान बिठवाते हैं। शब्दों की तो बात एक है, लेकिन हमारा जो वाइब्रेशन है आत्मिक स्थिति का, वही ज्ञान को बुद्धि में बिठाते हैं। तो वो वाइब्रेशन कितनी श्रेष्ठ है, कितनी सूक्ष्म है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 4 मार्च। आज ओम शांति भवन में ये सब देखते हुए भी थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि ओम शांति भवन में आते हैं तो बड़ी दादी की याद आती है, अव्यक्त बाप दादा की याद आती है, यादाश्त जो भी भरी हुई है वो सामने आती है। होली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, जागृत करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। कल्याण माना वो ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा, वो ज्ञान उनको समझ में आएगा, तो फिर वो अपने जीवन में लाने के लिए सहज रहेगा। प्रश्न, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? बहुत अच्छी विशेषता है, एक बहुत ही अच्छा शब्द बाबा ने यूज किया है। उत्तर, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। ब्यूटिफुल वर्ड, श्रद्धा, जिसमें निश्चय, विश्वास, भावना सब भरा हुआ है। गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं, साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। शाहूकारों को अपने धन का नशा रहता है। हमारे पास बहुत धन है वो तो एक बात है, लेकिन उनकी जो रहन सहन रहती है उसका नशा बहुत रहता है, और वो रहन सहन होती है धन के कारण। पाप जास्ती होते इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। गरीब में नम्रता होती है। गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, यह तो जरूर परमपिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। यह तो क्लियर महिमा है क्योंकि वह रचता है। मात पिता इसलिए है कि वह रचता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचता है, परलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। लौकिक बाप पैदा करते हैं लेकिन परलौकिक बाप भी हम बच्चों को पैदा करते हैं। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। लौकिक बाप सिर्फ बाप ही होता है, बंधु सखा नहीं बनता है, सिर्फ बाप ही रहता है। परमपिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। एक ही है जिनमें पूरा हर बात का ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है, वो ज्ञान उनमें नहीं है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है, तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? ज्ञान है लेकिन वो स्थूल बातों का ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। परमात्मा की जो महिमा है उनसे मिलती जुलती भी नहीं है। दोनों हैं भारत के निवासी, श्री कृष्ण और शिव बाबा दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं और कहां भी नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की भी जयंती मनाते हैं। तीन जयंती मुख्य है, शिव बाबा की जयंती, कृष्ण की जयंती और गीता की जयंती। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी? किसकी हुई होगी? शिव बाबा की होगी, लेकिन उन्होंने तो सब कुछ मिक्स कर दिया है। बाबा कहते हैं शिव की या श्री कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। कितनी बड़ी बात है वैसे, इतना सारा बाबा ने किया हम भारत के लिए, हम बच्चों के लिए, लेकिन उनको बिल्कुल भूल जाते हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं है। अगर भारत में ही इतना नहीं है तो और कहां कैसे जानेंगे। न गायन है, शिव ने क्या आकर किया उनकी बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। शिव बाबा आते हैं, इतना सब करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, पवित्र बनाते हैं सृष्टि को, फिर भी क्या किया कुछ नहीं पता है। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी है, गोपियों को भगाया, यह किया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं, कुछ मेंशन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई, श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे, श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए, एक ये कहते हैं, दूसरा कहते हैं पीपल के पत्ते पर आया, दोनों बातें बताते हैं, बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, जब बड़ा हो जाता है तो दिखाते हैं ना रथ पर खड़ा है, अर्जुन को सिखा रहे हैं तो रथ पर दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं, 16-17 वर्ष का होगा, बाबा कहते हैं 16-17 वर्ष का होगा शायद, बाकी चित्र छोटे बन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई, छोटा फिर ऐसा 16-17 साल का तो गीता कब सुनाई, उसी समय तो नहीं सुनाई होगी। जब लिखते हैं फलानी को भगाया, यह किया, उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं, अगर इसको भगाया उसको भगाया ऐसा कार्य किया तो फिर ज्ञान कैसे सुनाएगा, ज्ञान तो कितनी ऊंचा है तो वो कैसे सुना सकता है उस समय। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए, गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया, कुछ पता नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, इतना सब कुछ देखते हुए सब कुछ अपने आंखों के सामने होता है फिर भी सोए पड़े हैं। बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है, मैंने क्या किया, मुझे ही पतित पावन कहते हैं, मैं आता हूं तो साथ में क्या है, बाबा के साथ में क्या आता है, मैं आता हूं तो साथ में गीता है, बाबा आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं तो साथ में गीता भी आती है, मैं साधारण बूढ़े मनुष्य तन में आता हूं। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो, श्री कृष्ण जयंती गीता जयंती यह तीन मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है, इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है, अभी जो कुछ संगम पर होता है वो फिर बाद में मनाया जाता है। सत्युग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं, तो सत्युग में ये सब मनाएंगे नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसकी महिमा है नहीं, सिर्फ राजाओं का कॉरोनेशन मनाते होंगे और कोई त्योहार वहां होंगे ही नहीं, कुछ बातें हैं ही नहीं, तो बाबा कहते हैं सिर्फ राजाओं का कॉरोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, यह तो कॉमन बात हुई, आजकल तो सबकी में बर्थडे मनाते हैं। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो कोई बात ही नहीं है, श्री कृष्ण ने इतना किया तो भी बाबा कहते हैं कोई महिमा की बात नहीं है उसमें। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की बात ही नहीं। सत्युग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है, वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों में कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। बाप कहते हैं, बच्चों मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया, कलयुग का अंत है पतित दुनिया, सत्युग आदि पावन दुनिया। सत्युग की आदि में दुनिया पावन है, कलयुग के अंत में दुनिया पतित है। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। अभी तो दिखाई नहीं देता है अच्छी तरह से। तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा, कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था। नो ट्रांसलेशन आइदर, ओके। लेकिन ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है ना इनको, दोनों करो,
इतना हिंदी पढ़ के इतना इंग्लिश।
अच्छा, सो आई हैव टू ट्रांसलेट फ्रॉम हियर। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। आई एम योर फादर एंड आई विल ऑल्सो गिव यू एन इनहेरिटेंस। टू बैड, कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था इसलिए तुम मनाते आए हो, परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। शिव बाबा का नाम भूल जाते हैं तो फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। बड़े ते बड़ा कौन है? बड़े ते बड़ा शिव है ना। पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं, आत्माएं भी सब ऊपर से उतरती हैं। मेरा भी अवतरण है। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म भी पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आते तो है ना। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है क्योंकि स्थापना के लिए शरीर चाहिए। बोलना है, कुछ कार्य करना है तो स्थापना के लिए शरीर चाहिए, निराकार नहीं कर सकते हैं बिना शरीर से। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं। खुद बैठ बताते हैं, मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। खुद बैठ बताते हैं, मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है, तो पहले पहले समझाना पड़े। शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी? लौकिक में तो बा भक्त में तो यही कहेंगे, जानते नहीं है तो कृष्ण को बड़ा समझते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती बड़ी या कृष्ण जयंती बड़ी? अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो। यह सब समझने की बातें हैं ना, लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। शिव बाबा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए फट से गीता जयंती आती है। यह भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट्स तो ढेर हैं, बिगर नोट किए याद रह न सके। पॉइंट्स को नोट करनी चाहिए। वैसे भी कहते हैं अगर कोई भी बात हमको समझ में आती है और उसको लिखते हैं तो और ही बुद्धि में बैठती है। ऐसे ही बुद्धि में बैठने की एक बात है, लेकिन अपने हाथों से जब पॉइंट्स लिखते हैं तो वो बातें ज्यादा याद रहती हैं। पॉइंट्स तो ढेर हैं, बिगर नोट किए याद रह न सके। बाबा इतना नजदीक हैं, उनका रथ है, यह भी कहते हैं सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाए। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं बाबा इतना नजदीक बैठा है, इतनी आत्मा बाजू में बैठी है, तो भी बाबा कहते हैं सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाए, क्या है मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा को भी मुश्किल लगता है, तो हमारी तो बात ही छोड़ो, इसलिए हमें कितनी और ज्यादा मेहनत करनी होती है याद रखने के लिए। बाबा ने समझाया है सबको, दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आता होगा, भक्ति में शिव बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी कैसे स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती हैं। जब नई आत्मा आती है ऊपर से शरीर में प्रवेश करती है, तब वो आत्मा जागृत होती है और स्थापना का कार्य शुरू होता है। वह है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचता, तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़े ही रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूं। यह है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। यह तो कहते, एक तो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राज योग सिखाया था और किसी ने नहीं सिखाया। कितने भी वर्जन्स हैं, कितने भी हैं समझाने वाले, लेकिन ओरिजिनली सिखाने वाला शिव बाबा हैं। किसको पता नहीं है, शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वह कैसे आया, क्या आकर किया? वह तो सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड हैं। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए, परम आत्मा। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए, परमात्मा। वह भी आत्मा है, जैसे मनुष्य का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। मनुष्यों का गाइड, जो शरीरधारी का गाइड शरीरधारी होगा, तो आत्मा जो है उसको गाइड करने के लिए फिर आत्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापिस कौन ले जाए? बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूं, तुम मुझे याद करो। और कोई युक्ति नहीं है पावन बनने की, तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके कि देह का संबंध छोड़ो। श्री कृष्ण तो कह न सके देह का संबंध छोड़ो। वह तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। कृष्ण खुद सब संबंध में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है, तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। श्री कृष्ण को कोई का रूहानी बाप थोड़े ही, श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़े ही है। बाबा कहते हैं सबका रूहानी बाप मैं हूं। बाबा खुद कहते हैं सबका रूहानी बाप मैं हूं। मैं ही गाइड बन सकता हूं, लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूं। तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वह है कौन है नॉलेज देने वाला? वह है गॉड फादर। उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। वह क्या है? कुदरत है ना, यह कुदरत है ना। वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है। इतने छोटे स्थार में 84 जन्मों का पाठ है। कहां तक हमें ये भी बात अजीब की लगती है। मुझे याद है नई नई में ज्ञान में आई थी वो सीन, इतना मुझे याद है। हम बैठे थे दादी जानकी के सामने बाबा भवन में, वहां लंदन में। दादी सोफा पर बैठी थी और हम सब बैठे थे दादी के सामने। और उस दिन बाबा ने ये पॉइंट मुरली में बताई थी। तो दादी को इतना नशा था, मुझे नई नई थी मैं तो भी, मुझे याद है कि दादी इतने समय से, दादी ने सुना होगा 40-50 साल उस समय भी सुना होगा, तो भी दादी को यह पॉइंट सुन के इतना नशा था कि इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो आपने कभी सोचा होगा योग में भी बैठ के अगर आप सोचेंगे तो क्या भरा हुआ है इस आत्मा में, बड़ी अजीब की बात है। तो बाबा आज याद दिला रहे हैं इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पाठ है। यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पाठ है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं बाबा, भक्ति मार्ग में तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी है। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी है। कभी भी शक नहीं आना चाहिए कि हमारे आत्मा में कितने जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है। यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं। यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा में भी स्टार, आत्मा है भी स्टार माफिक। 84 का जन्म एक्यूरेट भुक्ति है। आत्मा 84 का चक्र एक्यूरेट भुक्ति है। सुख भी वह एक्यूरेट भुक्ति है। यह है कितनी बारी, 4 बारी बाबा ने बताया, यह है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परम आत्मा। उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। यह है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। यह भी बड़ी कुदरत की बात है कि हमने पहले सुना हुआ है, तब जब बाबा के पास आते हैं तो लगता भी नहीं है कुछ नई बातें हैं। कई होते हैं जो पहली बार ही सुनते हैं, कहते हैं हमने तो ये सुनी हुई बातें हैं। सुनी हुई इसलिए हैं कि पहले कल्प में सुनी है, अगले कल्प में सुनी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है वर्षा लिया है वही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है वह तो सहज है, राजा बनने में मेहनत है। किसको मेहनत लगती है? मेहनत लगती है सबको। जिसको मेहनत लगती है वो भाई हाथ उठावे। नहीं लगती है, क्योंकि बाबा ने कहा जिसको मेहनत लगती है वो राजा बनने वाले हैं, तो इसलिए मेहनत लगनी चाहिए। मेहनत लगती है तो फिर राजा बनेंगे। ठंडी लग रही है सबको क्या? तो वह तो सहज है, राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीबी भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वह भी राजा बनते हैं। गरीब भी अपनी मेहनत अनुसार, अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे वह भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते हैं। जो गरीब हैं उनके पास बिचारों के पास कुछ है नहीं इतना, तो क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे रहेंगे वही काफी है उनके लिए। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं, दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं, ऐसा भक्त कहते हैं। इतनी श्रद्धा इतनी भावना भगवान में होती है कि दर्शन दो हम जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं तो दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। साहूकार ऐसे नहीं कहेंगे, साहूकार कहेंगे ऐसे क्या कि दर्शन दो नहीं तो गला काट देंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वह बनते हैं। पैसे वालों को क्या होता है? पैसे वालों को अहंकार रहता है। यहां भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती है, गरीब माना ऐसे भी गरीब नहीं, हमारा दिल जैसे के सिंपल है, वो भी एक प्रकार की गरीबी है। तो गरीबी ये नहीं जिसके पास कुछ है नहीं। हमारे पास क्या नहीं है? हम बाबा के बच्चों के पास बहुत कुछ है, जरूरत से भी ज्यादा है, इसलिए हम गरीब नहीं है। लेकिन हमारा मन कहो या दिल कहो जैसे ऐसा भावना वाला है। गरीब जास्ती है, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे, तो भारत जो इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ? तुम समझते हो, अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है, तो फिर ऐसी चीजें रह न सके। हर चीज की आयु तो होती है ना, वहां जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। यहाँ तो कितना देखो ना, दोबारा करना पड़ रहा है ओम शांति भवन, क्योंकि आयु कम हो जाती है। यहाँ पे सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं फिर बन जाते हैं, उनों की बनावट ऐसी होती है। यह जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। यह जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ समझते हैं वही मकान होगे जो पहले थे, आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा। ऐसा विवेक कहता है, इन बातों से बच्चों का तैलुक नहीं है, यानी कि सबूत चाहिए, ये तैलुक हमको नहीं है। बच्चों को तो क्या करना है, हमें अभी बाबा पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं, अभी है संगम। सत्युग में यह नॉलेज नहीं होगी, इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिखाया था, किसने दिया था, अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने यह वर्षा किससे पाया, यहां पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहां जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे हैं, तुम्हारा धंधा ही है। क्या धंधा है हमारा, मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, देह अभिमान की दरकार नहीं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, देह अभिमान की दरकार नहीं। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता है। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। बाबा को कभी देह अभिमान नहीं आता, हमें मेहनत लगती है देही अभिमानी बनने की। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। जो देही अभिमानी बन बाप का परिचय देते हैं, बाप का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं, लड़ना झगड़ना। और कौन सी बात आती है देह अभिमान की, वो बाबा चाहे बहुत नहीं सुनाते हैं। लड़ना झगड़ना नवाबी से चलना देह अभिमान है। लड़ना झगड़ना वो तो हम जानते हैं, नवाबी से चलना देह अभिमान है। बल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। हमारा राजयोग है, हम राजा बनने वाले हैं, फिर भी अभी यहाँ साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी या पहने, ख्याल चलता रहेगा, इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी चीज, अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हो सकता है घड़ी याद आए अंत समय पर, अगर महंगी घड़ी होगी, बहुत पसंद की होगी, तो उस समय घड़ी मेरी कहाँ गई, याद आएगी ना। तो बाबा कहते हैं अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस बदले डिससर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है, देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं। और हमने अपनी दादियों को देखा कितनी साधारण चलती थी। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है, महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो, एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भल अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। बहुत भाषण अच्छे करते हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। सो भले कुछ कितना भी हो, बड़ा हो, ऐसे बहुत होशियार हो, लेकिन आपस में स्नेह हो। देह अभिमान लून पानी बना देता है, कोई बात में झट बिगड़ पड़ता, यह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाप से आकर पूछो। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूंगा बच्चों को बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु बच्चे बाबा को अनगिनत हैं, परंतु कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना, ऐसे बाबा का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसे देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरा, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है, तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, यानी कि रिपीट नहीं करते रहो, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों के पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है। क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। बहुत बड़ी बात, निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। आज हमारे बीच मंदा बहन ने मुरली सुनाई। हम सब मंदा बहन का भी करतल ध्वनि से धन्यवाद करते हैं। सभी जानते होंगे मंदा बहन को। आप लंदन से निकले हैं और ऑक्सफोर्ड में बाबा की सेवाएं दे रही है और बहुत ही पुरानी, जब से लंदन में सेवाएं शुरू हुई तब से आप बाबा के बने। अभी आज होली है तो होली का भी आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। होली पर हमारे जो सर्वेंट्स है, कर्मचारी है, वो सब छुट्टी पर जाते हैं, तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने नाश्ता, दिन का भोजन, जो आप भोजन करेंगे वो बर्तन आप सबको धुलाई करने होंगे, क्योंकि सर्वेंट्स नहीं होंगे, वो भी छुट्टी पर हैं, इसलिए अपने जूठे बर्तन आपको ही धुलाई करने होंगे ताकि दूसरे फिर उसको ले सके, नहीं तो बर्तनों का ढेर हो जाता है। कृपया कोई भी जूठे बर्तन छोड़ेंगे नहीं, न नाश्ते के न दोपहर के, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जैसे आप जानते हैं सब मजदूर छुट्टी पर जाते हैं होली पर, तो आज सवेरे कोई बसेस भी नहीं होगी। 4 बजे से ही बसेस मिलेगी, चाहे ज्ञान सरोवर जाने लिए, चाहे शांतिवन जाने लिए, सवेरे कोई भी बसेस नहीं जाएगी। और जैसे आपको बताया कि बाहर कोई न निकले, क्योंकि कई यहाँ आपको रंग लगा सकते हैं। आज रंगों का त्योहार है, रंगों का दिन है, तो आप किसको रोक भी नहीं सकते हैं, इसलिए बाहर न जाएं, यही आप सबसे निवेदन है। आई विल क्विकली अनाउंस डबल फॉरेनर्स प्रोग्राम। देयर आर फ्यू डायरेक्शंस फॉर डबल फॉरेनर्स। दोज हु न्यूली अराइव्ड यस्टरडे शुड सबमिट देयर गवर्नमेंट फॉर्म सी टू द डिपॉजिट ऑफिस आफ्टर ब्रेकफास्ट। दोज हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम मनमोहिनी 1 नीड टू एंश्योर द ऑफिस हैज योर करेक्ट रूम नंबर। Please deposit your valuables to keep them secure. Second, those who have not yet collected the double foreigner badge are requested to come to deposit office between 9 a.m. to 11:30 a.m. today for your badges. Security staff will ask to see your badge whenever you enter any of Baba's campuses, and the badge is important for Bab Dada Milan too. So, as I mentioned about no buses, there will be no buses to Shantivan or Gyan Sarovar till late afternoon today due to Holi festival. So please stay on the campus and not venture out even for walks till 4 p.m. So this evening's program is as such. Well, this morning there is a class, there a workshop in Gyan Sarovar, but I don't think you can go. The workshop is by Sister Judy Johnson of Canada, and the topic is the bestower uses the best in me, in the Harmony Hall. But you are most welcome to go by 4 o'clock bus, and the Sudesh Didi will meet Europe, UK and Middle East in the meditation hall at 4 o'clock. So please make sure that you catch the 4 o'clock bus and be in the meditation hall. Sudesh Didi will meet Europe, UK and Middle East in the meditation hall. And also 4 p.m. Sister Rajni will meet the first timers in Dari's cottage. Sister Rajni will meet the first timers in Dari's cottage. And 4:30 to 6 is Mental Health Advisory Group Meeting. Mental Health Advisory Group Meeting in the training center room number 1 at 4:30 up to 6 p.m. And then there is also the general class, 5 to 5:15 p.m. meditation, 5:15 to 6:15 p.m. experiential session by Sister Meera on the topic qualifications to pass with honors in the Harmony Hall, 5:15 to 6:15. And then 6:30 to 8 is special Russian dance program in the Harmony Hall. And all of you are invited, especially double foreigners are invited to attend the Russian dance program. And then double foreigners can have dinner in Gyan Sarovar. So 6:30 to 8 Russian dance program. This is today's program. This will be put on display outside History Hall. You can have a look again. Om Shanti.
Om Shanti. Aaj Holi ka Shubh Pavan Divas hai. Aur aaj ke din Pyare Baba hum bachon ko har prakar se bharpoor khushiyon se bharpoor gyan aur shakti gunon se वरदानों से भरपूर करते हैं. वैसे तो रोज बाबा हम बच्चों को वरदान भी देते हैं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार भी करते हैं, बाबा बच्चों को प्यार भी करते हैं और खुशी के झूलों में भी झुलाते रहते हैं. तो आज के दिन विशेष प्यारे बाबा बाप दादा दादी प्रकाशमणि दादी जानकी गुलसा दादी तथा अन्य एडवांस पार्टी की दादियां तथा हमारे विशेष यज्ञ के आधार मुहूर्त रतन दादाएं और हम सबको प्रेरणा देने वाले जगदीश भाई निव्या भाई रमेश भाई ब्रजमन भाई सभी की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई हो. और बाबा हमेशा याद दिलाते हैं बच्चे ब्राह्मण जीवन का आधार है होली अर्थात पवित्रता. बाबा हमेशा कहते हैं कि यही एक फाउंडेशन है जिस फाउंडेशन के आधार से ही ये यज्ञ का फाउंडेशन स्ट्रांग और इसी फाउंडेशन के आधार से हम अपनी नई दुनिया का निर्माण और नई दुनिया के अंदर राज्य करते हैं और हम सदा ही अपनी नई दुनिया में खुशियों के झूलों में झूमते रहते हैं. तो आज के दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं. अभी हम सब मिलकर के प्यारे बाबा के पास जाएंगे, वतन में बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे. भोग के साथ साथ बाबा के साथ होली कौन खेलेंगे हाथ खड़ा करो. जो होली खेलेंगे बाबा के साथ वतन में हाथ खड़ा करो.
ठीक है बाबा, देखेंगे आपकी होली कौन कैसे खेलता है। फिर भोग के बाद, संदेश के बाद, फिर हम सब यहाँ पर स्थूल में, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, आप सबके ऊपर गुलाब बाशी डालेंगे। और बाबा कहते थे ये मेरे विशेष रतन है, और बाबा नहीं कहते जो जो से रंग डालो, बाबा ये नहीं कहते थे किसी को ऐसा कर दो। बाबा के पास हमें याद आता है साकार बाबा में जब आते थे तो कभी कभी गर्मियों के दिन होते थे, और पहली प्रदर्शनी जब माउंट आबू में हुई थी तो उस समय जब प्रभात फेरी करके सबके सब यहाँ आबू में आए, बाबा पांडव भवन में आए, तो बाबा ने अपने हाथ में गुलाब बाशी रखी थी। देखा है गुलाब बाशी, ये गुलाब बाशी है। तो बाबा अपने हाथ से गुलाब के वर्षा, गुलाब के फूलों की, गुलाब के फूल की ऐसा करते थे स्वागत, जैसे ऊपर से आपके देवताएं स्वागत कर रहे हो। तो आज भी हम सब भोग के बाद, संदेश के बाद, फिर यहाँ पर हर एक को स्नेह भरी, प्यार भरी दृष्टि के द्वारा हर एक के ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जैसे डिजिंग होता है ना, हल्की हल्की फुहार होती है, वैसा ही आप सबको प्यारे बाबा की यादों के साथ सबके ऊपर डाला जाएगा। और सबको स्वागत है इस प्रकार के बाबा के साथ होली खेलने का, बाबा के साथ मिलन मनाने का। तो अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, और जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि कोई भी 4 बजे तक बाहर नहीं जाएंगे, और 4 बजे के बाद ही बसेस मिलेंगे। अच्छा, वह भाई बहने जो शांतिवन से आए हाथ खड़ा करें, भाषा तो जानते नहीं है, पता नहीं समझ रहे या नहीं, क्योंकि तमिलनाडु है ये हम, तो सभी भाई बहने ध्यान देंगे। सबका सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है। जैसा कि शिलू बहन ने बताया कि ज्ञान सोह में शाम को कल्चर प्रोग्राम है, जो भी मधुबन निवासी भाई बहने जाना चाहे वह भी जा सकते हैं, डबल विदेशी भाई बहने तो जाएंगे ही। अभी हम सभी चलते हैं वतन की ओर, प्यारे बाबा के पास, और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, और भोग के बाद बाबा के साथ हम सब मिलकर के वतन में ही रास करेंगे। फिर साकार में तो बाबा उसकी झलकियां दिखाते, वो भी देखेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। क्योंकि दिन में कहीं जाना नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्लास रखेंगे। Those double foreigners who want a class in Pandav Bhavan this morning, raise your hand.
A different language, a translation.
Translation nahi hoga. Chodo. Hindi walon ka class rakhenge. Burma wale sab haath uthaye, Burma wale. हाँ, तो आप लोगों का क्लास रखेंगे 11 बजे मेडिटेशन हॉल में, यहाँ क्लास करना, और हमारे छोटे लाल भाई आप सबका क्लास कराएंगे 11 बजे, ठीक है? What Sister Mori, Sister Manda is saying, those who understand English, they like a class, then we can give class to double foreigners who know English. Other language is not possible. Who, anybody wants a class? Any double foreigners? No. Hindi walo ka rakhenge. No, so double foreigners want free time. Okay. But Hindi walo ka class rakhenge. 11 baje sab meditation hall mein pahunchenge. Jo bhi Hindi jante, chahe wo UK ke ho ya kahan ke bhi ho, Hindi walo ka class meditation hall mein. Om Shanti.
हम सब बच्चे महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में मिले अंबर के उस पार मिले अंबर के उस पार पंछी
पिचकारी चलाए
वो सच्ची होली हम मनाए वो ज्ञान पिचकारी चलाए वो आओ हम खेलेंगे होली हम अनमास की अब होली वो सच्ची होली हम मनाए
अब शिव से मनाए
शिव से मनाए शिव से मनाए
संपूर्णता के गीत हम गाए
गीत हम गाए गीत हम गाए
मंगल मिलन सब शिव से मनाए संपूर्णता के गीत हम गाए
वरदानों से घर के जोड़ी हम आत्मा शुद्धि अब हो ओ सच्ची होली हम मनाए ओ ज्ञान पिचकारी चलाए ओ आओ हम खेलेंगे होली हम आत्मा शुद्धि अब होली ओ सच्ची होली हम मनाए ओ ज्ञान पिचकारी चलाए ओ आओ हम खेलेंगे होली हम आत्मा शुद्धि अब होली ओ सच्ची होली हम मनाए ओ सच्ची होली हम मनाए
तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है पापा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है जिस
भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रही
होली के दिवस के निमित्त सब भाई बहनों की बहुत ही खुशियों भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाके क्या देखती हूं कि दूर से इंद्रधनुष की तरह डिफरेंट कलर्स की एक बहुत सुंदर लग दिखाई दे रहा था और बाबा उसके पीछे और इंद्रधनुष के सभी सातों ही कलर का एक मुकुट बना हुआ था जो बाबा के मस्तक के ऊपर, सिर के ऊपर अलग अलग कलर के लाइट्स के द्वारा चारों ही तरफ वतन में वे लाइट्स फैल रही थी। और वतन में तो आज का दृश्य इतना रंग बिरंगा, लेकिन मन के अंदर इतनी बहुत कुछ अनुभव कराने वाला था। बाबा कुछ समय के बाद जैसे नजदीक आए तो बाबा को देखते ही चारों ही तरफ अनेक प्रकार की लाइट्स के वाइब्रेशन फैल रहे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे, और कौन आया है? मैंने कहा, आज तो सबने बहुत याद भी दी है, खुशियों में झूम रहे हैं। बाबा ने कहा, केवल याद दी है कि बाबा के पास नहीं आए हैं। मैंने कहा, बाबा अमृत वेले से ही आपके पास तो पहुंचे हुए। बाबा ने क्या किया, ऐसी ताली बजाई तो देखती हूँ चारों ही तरफ सबके सब भाई बहने भारत के, देश विदेश के दिखाई दे रहे थे। और बाबा की दृष्टि से उनके हर एक के ऊपर दो प्रकार के ताज डलते जा रहे थे। एक ताज था रतन जड़ित और दूसरा ताज था जैसे लाइट का ताज होता है। आज लाइट का ताज इंद्रधनुष की तरह सेवन कलर्स का था और वो दिखाई दे रहा था। अब वो दृश्य तो इतना सुंदर था, बाबा ने कहा, ये मेरे होवनहार विश्व के महाराजा महारानी प्रिंस प्रिंसेस हैं। उन्हें देखकर बाबा बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये सब बच्चे इस संगम युग के अंदर बाप के साथ और संगम युग की प्राप्तियां संगम युग के विशेष वरदानों के साथ जीवन के अंदर खुशियां अनुभव वरदानों से खेलते रहते हैं और यही वरदान और यही बाप के द्वारा जो प्राप्तियां हैं वही बच्चों के लिए अनेक प्रकार के किसी गिफ्ट के समान है। तो फिर क्या देखती हूँ बाबा बीच में खड़े हैं और सभी भाई बहने बाबा के साथ रास कर रहे हैं और ऊपर से इंद्रधनुष की तरफ से जैसे सबके ऊपर लाइट की किरणें पड़ती हैं और सबका बहुत सुंदर ऐसा रूप दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा बाबा सदा अपने बच्चों का ऐसा स्वरूप सदा देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन बच्चे बाप के साथ खुशियों में नाच रहे हैं और बाबा यही चाहते हैं सदा ब्राह्मण जीवन में भी खुशियों में नाचते रहे। तो बाबा सबको ऐसी सुंदर रास करा रहे थे सबके ऊपर अलौकिक दुनिया जैसा नहीं हर एक के ऊपर किसी के मस्तक के ऊपर एक बहुत सुंदर तिलक लगता जा रहा था और सारा ही सुंदर श्रृंगार हो रहा था और वो दृश्य तो बहुत सुंदर था। बाबा ने कहा आज सब बच्चे वतन में आए हैं और बाबा ने बुलाया है। तो बाबा ने कहा देखो अभी बाबा क्या करते हैं। तो बाबा ने कहा सब बच्चे अपनी आंख बंद करो। सबने आंख बंद किया और सबके सामने एक पिचकारी आती थी और वो पिचकारी सबके हाथ में थी और वो पिचकारी जैसे आई आंख खोली तो बाबा ने कहा चलाओ इस पिचकारी को। तो वो पिचकारी लेके तो खड़े हो गए लेकिन उसको चलाएं कैसे। तो पिचकारी को चलाने के लिए जो लास्ट का दबाने का बटन था तो उसको दबाते थे किसका थोड़ा दबता था किसका कम दबता था। तो उस बटन के ऊपर लिखा हुआ था बाप समान। तो बाबा ने कहा जब ये लक्ष्य है बच्चों का कि बाप समान बनना है तो वो बटन दबता था। फिर उस पिचकारी के तरफ दो साइड के अंदर छोटे छोटे और पंख दिखाई दे रहे थे और उन पंख के ऊपर लिखा हुआ था एक में प्योरिटी और दूसरे में लिखा हुआ था प्योरिटी और दूसरे में लिखा था कि बाप समान रॉयल्टी। तो बाबा ने कहा जब बाप समान बनने का लक्ष्य है तो पहला कदम है प्योरिटी और प्योरिटी के साथ रॉयल्टी। और फिर जैसे वो दोनों पंख ऐसे हिलते थे और उसके हिलने से और आगे का जो पिचकारी का था जगह वहां से अलग अलग प्रकार की लाइट की रेस निकलते हुए हर रेस के अंदर कुछ न कुछ वरदान लिखा हुआ था। तो बाबा ने कहा आज के दिन बच्चों को वरदानों की होली खेलनी है। कोई भी मिले कैसा भी हो हर एक के प्रति मन के अंदर ऐसी शुभ भावना के साथ कोई न कोई शुभ बोल और वरदान शुभ भावना रहे तो ये आपसी एकता और संगठन को मजबूत करने का तरीका है। फिर बाबा ने क्या किया आज तो बाबा बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। तो जैसे गिफ्ट का नाम लिया तो सबके सामने एक ट्रांसपेरेंट छोटा सा बॉक्स आता था। बॉक्स नहीं था ऐसे छोटा सा शोकेस टाइप था और उस शो के अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल की तरह एक एंजल दिखाई दे रहा था और उस क्रिस्टल के एंजल के अंदर इतनी सुंदर लाइट चारों तरफ, वो एंजल ऐसे चारों तरफ घूम रहा था। बाबा ने कहा आज बाबा बच्चों को ऐसा बताते हैं, वरदान देते हैं कि मेरा हर बच्चा ट्रांसपेरेंट रहे। दैट मीन्स बाबा ये बोल रहे थे कि हर बच्चा दिल से साफ क्लियर रहे और दिल में उसका ऐसे प्योरिटी आ जाए तो उनके चेहरे द्वारा जैसे बाबा को देखते लोगों को साक्षात्कार होता था। बाबा ने कहा अभी बच्चे समय को देख रहे हैं तो आज ऐसे समय के अंदर बच्चे अपने आंतरिक स्थिति को ऐसा क्लियर ट्रांसपेरेंट बनाए क्योंकि दुनिया के लोगों को ऐसी आवश्यकता है, लगे कि कोई एंजल उनके सामने उनको पुकार को सुनने के लिए और उनकी आवाज को सुनने के लिए और उनको अनुभव कराने के लिए आया है। तो वो एंजल जो थे चारों ही तरफ इतना धीरे धीरे चल वो करते घूमते हुए उनकी लाइट पहुंचती थी और सारे विश्व में पहुंच रही थी। बाबा ने कहा अभी समय चेतावनी भी दे रहा है कि बच्चों को अंदर से ट्रांसपेरेंट बनना है तो परिस्थितियों में रहते हुए हल्के फरिश्ते जैसा ही अनुभव करते रहेंगे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, भोग के बाद फिर बाबा सब बच्चों को रास करा रहे थे। फिर बाबा को तो पता था कि विश्व की हालत क्या है तो बाबा ने कहा बच्चे पूरे बच्चे सभी बच्चे अपने घर में आराम से हैं, लेकिन कोई सोचने की बात नहीं है, साक्षी होकर के ड्रामा के हर सीन को देखें और अपनी आंतरिक अवस्था को बाप के साथ मजबूत बना करके बाबा साथी हैं और हल्के होकर के चले। बाबा ने फिर सबको याद दिया, फिर वही क्रिस्टल सबके सामने आया। बाबा ने कहा सब बच्चे बाप समान एंजल की तरह वो क्रिस्टल जैसा ही बन करके खुशियों में झूमते रहे और सबको खुशियों में नचाते रहे। अच्छा ओम शांति।